चुका होगा, उनमें से जो सीधा सीधा पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक या जर्नैली नाम है वो भी सबको मालूम है। लेकिन मसला ये है कि ये कोई 1 करोड़ से ऊपर डॉक्यूमेंट है। अब इनको छानने में और इनमें असल में किसके बारे में क्या डिटेल है, जाहिर है कि कम से कम 6 महीने तो चाहिए अगर बहुत सारे लोग भी मिल मिला के इनकी छान भटक करें। तो ये तवातुर के साथ इसमें से खबरें आती रहेंगी, ये जो पहाड़ है डॉक्यूमेंट्स का, इसमें से लोग खोद खोद के निकालते रहेंगे चीजें। पनामा लीक्स में जो नाम आए थे वो तकरीबन 450 के करीब थे, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि सबकी छानबीन नहीं हुई थी, सिर्फ कुछ लोग, स्पेसिफिक लोग जिनकी छानबीन मकसूद थी उनको जीरो इन किया गया, और फिर उनमें से कुछ को सजाएं भी हुई, जुर्माने भी हुए। वाहिद एक जोड़ा था, ऑफशोर कंपनी थी उसकी, जिससे के नैब कोई 6.5 बिलियन रुपए निकलवाने में कामयाब हो सकी। उसके अलावा जो 400 लोग थे उनमें से तकरीबन 250 को नोटिसेस जारी किए गए थे, लेकिन उनकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची, किसने की, खत्म हो गई या अभी तक जारी है, किसी को कुछ नहीं मालूम, सिवाय शरीफ फैमिली के या उससे रिलेटेड कुछ लोगों के, जिनका हम जाहिर है कि चूंकि वो जिम्मेदार ओहदों पे रहे हैं इसलिए हम बार बार तवातुर से तذکرہ सुनते हैं। मुझे खदशा ये है कि ये जो पेंडोरा पेपर्स हैं इनके साथ भी यही होगा कि हाहाकार तो बहुत मची है, लेकिन अमली तौर पे इनमें से कितने अकाउंट्स की छान पटक हो पाएगी, और हो भी गई तो उनमें से कितनों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा, और कर भी दिया गया तो उनमें से कितनों को सजा होगी, ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं जो हैं। जो सबका तजर्बा है उसकी रोशनी में ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अगर हुआ भी तो शायद एक और नई विच हंटिंग हो जिससे कोई फायदा नहीं होगा। इन पेपर्स के लाने का मकसद ये है कि ओवरऑल जो एक करप्शन या मशकूक ट्रांजैक्शन का कल्चर है वो ग्लोबल कल्चर, उस पर जरब लगाई जाए। लेकिन अगर आपने अपने अपनों में रेवड़ियां बांटी और अपने अपने जो हैं दूसरे जो हैं जो आपके इमीडिएट टारगेट्स हैं उन तक कंसंट्रेट किया तो ये मकसद कभी हासिल नहीं हो सकेगा, और ये पाकिस्तान की हद तक नहीं है, मेरा ख्याल है बाकी ममालिक में भी शायद यही मॉडल फॉलो हो रहा है।
सर, जब पिछली गवर्नमेंट थी तो उस गवर्नमेंट के भी मेरा ख्याल है 2 साल पहले, जाने से 2 साल पहले ये वो पनामा लीक्स आए थे, और ये पेंडोरा पेपर्स जो हैं ये भी कोई 2 साल 3 साल का दौरान ही इन्होंने पूरा किया है, तो कोई टाइम में भी मसलत पाई जाती है?
नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जिन्होंने ये पेपर्स लीक किए हैं उन्होंने कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक टाइम चुना होगा, इसलिए कि इसमें तो पूरी दुनिया के 60 से ज्यादा के लोगों का तस्करा है, तो
सही।
कोई इंसिडेंस हो सकता है लेकिन कोई सोची समझी बात तो नहीं लग रही मुझे।
बहुत शुक्रिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि पाकिस्तान में जाहिर है वो पुरानी लाइन को पीटने वाली बात है, एक क्विकली चंद लफ्जों में बता दिए एवन फील्ड रेफरेंस क्या था, और उसी याद दहानी कराते हुए मरीम नवाज साहिबा ने अपनी नई दरख्वास्त जमा कराई है, तो अगर उसके बारे में कुछ फरमाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी।
हाँ, बहुत अच्छे बात। आज ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक सबक रेफरेंस है उसको चैलेंज किया है, और जाहिर है कि ये प्रॉपर्टी से मुतालिक है, शरीफ फैमिली की प्रॉपर्टी से मुतालिक, और जिस जज साहब ने फैसला सुनाया था वो अब एहतसाब अदालत के, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो भी एक मुतनाज़ सूरत हाल में, आपको याद होगा एक वीडियो का सिलसिला भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, तो उसकी रोशनी में ये इन्होंने रिव्यू पटिशन की है। लेट्स सी के हाई कोर्ट में इसका क्या डिसीजन होता है, और अगर इसका डिसीजन इनके हक में आ भी गया तो वो जो मुनीर नियाजी का शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, तो रेफरेंसेस की कोई कमी है नहीं, तो एक ना हुआ तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा हो जाएगा। इसका ताल्लुक ना अदालत से है ना सियासत से है, इसका ताल्लुक है कि अकोमोडेशन किस लेवल पे होती है और कब होती है।
उसरा खान साहब, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं सर आप?
अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा, एक हमारे कॉलर है, उन्होंने अभी कॉल किया, उन्होंने जरा थोड़ा सा उन्होंने कहा कि भाई मुस्तफा खान साहब जी ये कह रहे हैं कि तालिबान जबरदस्ती आए हैं, ये लोग जबरदस्ती नहीं आए हैं।
नहीं नहीं, उन्होंने मुस्तफा खान साहब ने कहा है कि दोहा में बाकायदा मुआहदा हुआ था, उन्होंने तो बड़ी तफसील से
यही मैं कह रहा हूँ कि वो भाई साहब मैंने
समझाया, मुस्तफा खान ने बड़ी डिटेल में उन्होंने मेरा ख्याल अंडरस्टैंड नहीं।
दूसरी बात ये कि मेरा जो सवाल आपसे है वो ये कि अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहा कि कोई दुनिया की कोई कौमें जो या मुल्क जो हैं इनको रिकग्नाइज नहीं करते हैं और इनका पैसा बहाल नहीं होता है, तो ये सिलसिला कब तक चल सकता है? ऐसे
कोई नहीं बता सकता, इसलिए कि जो इराक का जो नाकाबंदी हुई थी, हालांकि इराक की हुकूमत को तस्लीम किया हुआ था सद्दाम हुसैन की, अमेरिका ने भी तस्लीम किया हुआ था, लेकिन जो इख्तसारी नाकाबंदी थी वो कई बरस तक चली थी और फिर उसको अक्वामे मुत्तहिदा का जामा भी पहना दिया गया था, उसके पर्दे में वो नाकाबंदी हुई थी। लेकिन ये जो नाकाबंदी है बेसिकली ये अमेरिका लेड है, हालांकि इसमें थियोरेटिकली रशिया और चाइना शामिल नहीं है, लेकिन वो भी इस वक्त जो एक इंटरनेशनल कंसेंसस बना हुआ है बेसिक ह्यूमन राइट्स या मिनिमम राइट्स के हवाले से कि ख्वातीन को कम से कम तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए और जो दीगर अफगान कौमियतें हैं मिनिमम ही सही लेकिन उनकी नुमाइंदगी ज़रूर हो, तो ये जो दो चीज़ें हैं मेरा ख्याल है जब तक ये मुकम्मल नहीं होती ये क्राइसिस चलता रहेगा। और तालिबान को ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका या दूसरे वेस्ट कह रहा है, खुद पाकिस्तान भी ये चाहता है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो भले अलामती ही सही। तो तालिबान को फिलहाल मेरा ख्याल है वो हालात की नज़ाकत का एहसास करते हुए अगर पाकिस्तान जैसे दोस्त कह रहे हैं तो फिर उन्हें सीरियसली इस बात पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिलहाल शायद वो आपस में जो एक है हर तंजीम के अंदर भी एक कुछ सिलसिले होते हैं, ग्रोहबंदी होती है, शायद उसको वो सुलटाने में इतने मसरूफ हैं कि वो ध्यान से ये बात सुन नहीं रहे।
बहुत शुक्रिया सर आपका, और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले ट्यूसडे को, तब तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह हाफिज।
ओके, अल्लाह।
मुस्तफा खान साहब से हमने आपकी बातचीत कराई, और जैसे अभी भाई साहब जिन्होंने सवाल किया, अगर आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को देख लेंगे तो मुस्तफा खान साहब ने प्रोग्राम के शुरू में अपनी न्यूज़ में इस बात का शेयर किया था कि दोहा में जब अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हुए थे तो वो मुज़ाकरात अमेरिका के साथ थे और अमेरिका कभी टेबल पर बैठ के टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात नहीं करता, तो किस ग्राउंड के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे जो आज उनको तस्लीम नहीं किया जा रहा? यानी बाकायदा मुख्तलिफ स्टेज पर यह मुज़ाकरात होते रहे, अगर आज की उनकी हुकूमत है तो किस ग्राउंड पर उनको तस्लीम नहीं किया जाता, और अगर तस्लीम नहीं करना तो फिर मुज़ाकरात करने की क्या ज़रूरत थी? ये उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ या हमारा पहले सवाल का जवाब यहीं से स्टार्ट हुआ था। हमारे चंद एक स्पॉन्सर, और उसमें एक जिक्र करना चाहती हूँ, जनाब हबीब अमरजान यहाँ पे सिटीस्केप के साथ वाबस्ता हैं, अगर पाकिस्तान में आपकी प्रॉपर्टी है तो कनाडा में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जनाब सिद्दीकी साहब, अगर कोर्ट कचहरी का मामला है, ज़मीन खरीदनी है, ज़मीन बेचनी है, पावर ऑफ अटॉर्नीज का मामला है, तो आप प्रॉपर्टीज़ इन पाकिस्तान के हवाले से रब्ता कीजिए सिद्दीकी साहब को 416-520-4172 आप कॉल कर लीजिएगा। हबीब रमजान रियल स्टेट न्यू इमिग्रेंट्स के लिए इसकी सेटलमेंट का मामला हो या कम्युनिटी सर्विसेज, यकीनन जानी पहचानी शख्सियत है आजकल पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो कैनेडा में रहने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की लुक आफ्टर कर रहे हैं। साहब मैं एक और अनाउंसमेंट को शेयर करते हुए छोड़ूंगी यहाँ पे, और शाजिया जी न्यूज़ इन डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। वुड फायर्ड पिज्ज़ा का जिक्र करना चाहती हूँ, इटालियन जिसको रन करते हैं, हैमिल्टन के पास नाउ इन हार्टलैंड टाउन सेंटर, वेराइटी ऑफ पिज्ज़ास यानी इटालियंस हैं, एंड उन्होंने हलाल सेक्शन आपके लिए तैयार किया, गीतियारा जी ही इसको लुक आफ्टर करेंगे, क्लासेस मार्गरीटा पिज्ज़ा, स्पाइसी बफलो पिज्ज़ा, फोर चीज पिज्ज़ा के साथ तकरीबन चार या पांच डिफरेंट अराउंड 40 के करीब टॉपिंग्स हैं, 40 टॉपिंग्स के साथ आप پیزاز حاصل کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے ڈو باکسز, ڈی او یو جی ایچ باکس ڈاٹ سی اے. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیے, یہ ووڈ فائر پیزاز تیار کریں گے اور ان کی گرینڈ اوپننگ ایکسپیکٹڈ سون. ویٹ فار آر نیکسٹ اناؤنسمنٹ. چند ایک اسپانسرز اینڈ شازیہ جی آپ کے ساتھ ہوں گی ود دا لیٹسٹ نیوز.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ دا بھی چلاونے ہو مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھول دیا, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. آہو جی کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیوب دا ون سٹاپ شاپ, 519-622-0660 یا کوئک ٹرک لیوب ڈاٹ کام. QTL, because we care.
آٹیزم کے ساتھ رہنے والا ہر بچہ منفرد ہے, اسی طرح ان کے خاندان بھی. ایلینو کیٹس اس بات کو سمجھتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم محفوظ سیکھنے کے ماحول میں آٹیزم کی وسیع رینج فراہم کرتے ہیں اور ہم خاندانوں کے ساتھ مل کر ہر بچے کو ان کی پوری صلاحیت تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. برامپٹن, مسیساگا اور اوکویل میں ہمارے مراکز کے ذریعے خدمات دستیاب ہیں. 20 سال سے بھی زیادہ ایلینو کیٹس آپ کے ساتھ راستے کے ہر قدم پر. پہلا قدم ہے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرنا, elinokids.ca.
ڈائیورس یا کسٹڈی دی لڑائی زندگی دی سب تو اوکھی لڑائی ہوندی ہے, کیونکہ تسی اس شخص نال لڑ رہے ہوندے ہو جس نال تہاڈا گھر پریوار تے تہاڈے بچے سانجے نے. اس وقت کئی سوال اٹھتے نے کہ پراپرٹی کس کول جائے گی, کسٹڈی کس نو ملے گی, تے زندگی دی سب تو پیاری دولت بچے کس کول رہن گے.
ایس این ایس لوئرز کو ان سارے سوالاں دے جواب تے تہاڈے حق لے لڑن واسطے لیاقت ہے. اپنے حق جانن لئی یا سلان لین لئی اج ہی ایس این ایس لوئرز نو کال کرو 416-655-2000.
کووڈ 19 کر کے سارا کام آن لائن ہو گیا, گروسری آن لائن ہو گئی, ٹیوشن آن لائن ہو گئی, اور تاں ہور کل مینوں ریا نے دسیا کہ سوڈی فرنیچر والے بھی ہن آن لائن فرنیچر سیل کر رہے ہیں.
بالکل ٹھیک سنیا, تے ہن انہاں دا سٹور بھی کھل گیا ہے.
برمٹن دے سب تو وڈے فرنیچر سٹورز وچوں ایک سوڈی فرنیچر تے ہن کووڈ 19 دے دوران انہاں دی ویب سائٹ sodifurniture.com تے جاؤ اتے اپنی پسند دا فرنیچر سلیکٹ کرو. سٹور وچ آ کے سیم فرنیچر دیکھو اتے سیم پرائس تے لو. انہاں دی کینیڈی لوکیشن ہن کھل چکی ہے. فار مور انفارمیشن کال 9058747171.
جب ایک فون بجتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں. جب دھواں یا کاربن مونوآکسائڈ الارم بجتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کیا کرنا ہے؟ یہ جاننے کے لیے کہ دھواں اور کاربن مونوآکسائڈ الارمز کیا ہیں اور کیا مختلف الارمز ہیں, ان کی آوازوں کا مطلب کیا ہے. ایک چہچہانے والے الارم, چپرنگ الارم کی آواز کا مطلب ہے کہ آپ کو بیٹری یا الارم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ایک بیپنگ الارم کا مطلب ہے کہ باہر نکلیں, باہر رہیں, 911 پر کال کریں. آپ اور آپ کے خاندان کو brampton.com پر جا کر آگ سے جو حفاظت کے الارمز ہیں اس کو جانیے, سیکھیے اور جانیے کہ قیمتی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے. آگ سے روک تھام کا ہفتہ امریچ کی طرف سے سپانسر کیا گیا ہے.
Spirit Mickey Menswear, three elements that represent the brand, fit, quality and value. Only South Asian owned men's custom sweating and shirting company in Canada. Fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compared to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss. 100% Italian wolf suit starting from $2.99. 100% Egyptian cotton shirt starting from $29.99. Chinos, Mariano, wolf sweaters, denim jeans, corduroy shirts, trousers and more. Visit today, 1535 Merseyside Drive, Unit 19. 20 Mississauga. Call 905-670-3388.
ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس ایل ای ڈیز اور ہوم اپلائنسز کی ہاٹسٹ اور برانڈیڈ رینج کے ساتھ 0% فائنانس گارنٹی اور لوئسٹ پرائسز اور فری ڈیلیوری ان جی ٹی اے. تو انتظار کیسا, ابھی وزٹ کریں ٹیلی ٹائم برامپٹن 280 ردرفورڈ روڈ یا اسپرنگ ڈیل اسکوائر شاپنگ سینٹر یا ایٹوبیکو 1770 ایلبین روڈ یا 9909 مارکم روڈ. مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666. ٹیلی ٹائم الیکٹرانکس.
जी साहब, वेलकम बैक अगेन। एंड 5:14:50 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं। अब हम ले चलते हैं आपको दुनिया की सैर के लिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और सारे तान, और इसके साथ साथ यूरोप एंड मिडल ईस्ट एंड अमेरिका एंड टोरंटो एंड ओंटेरियो एंड कनाडा, और क्या चाहिए आपको। लीजिए साहब, सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहीं पर। अब से कुछ देर बाद शाजिया जी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह,
खैरियत से?
अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या क्या चीज़ें आप चाय में डूब के खा सकते हैं?
क्या क्या? सबसे पहले तो बिस्किट।
ओके, एंड
दूसरे क्या होते थे वो, काके, क्या क्या कहते हैं उसको?
रस।
यस,
पापे कहते हैं, काके क्या होता है?
या यू आर राइट, पापे।
काका
दे वो देता।
अच्छा बताइए, और क्या कर सकते हैं आप?
और क्या कर सकते हैं? हाँ। और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं?
कभी केला डोब के खाया आपने?
सुना है मैंने।
हाँ, एक जो बंदा था ना, कहता है बाबा जी हूं देखो ना, बंदा कितनी मुश्किल दे विच है, इंसान इंसान की लाइफ कितनी मुश्किल विच है।
हाँ जी,
बीवी कहती है मैं चाह बनाई है, चाह पी लो, बेटे ने केला ले आ देता है, तो मैं की करा? तो बाबा जी कहते हैं तो केले नु चाह वे डोब के पी ले, खा ले तू, है नाल नाल चाह पींदा जा। तो कहंदा है बाबा जी अगर मजा ना आया तो फिर बाबा जी कहते हैं फिर बेउदा हरकत ना करी।
साफ साफ बात है जी, साफ बात है जी।
बाबा जी इतने ज्ञानी है उनके पास, भाई तुम क्या बकवास क्वेश्चन लेकर आए। देख ले जरा,
देख ले जी।
हाँ, मासूम हमारे बंदे जो हैं उनको समझ ही नहीं आ रही है। देखें, अब देखें, मैं तो खाने पीने का शौकीन बंदा हूँ ना, तो मैंने तो खाने पीने की चीजें करनी है, सारे मेरे लतीफे भी खाने पीने से रिलेटेड है
सब चीजें।
हाँ, एक वो बंदा था ना,
मिलियन डॉलर चीजें, तो क्या करूंगी,
बैठ के जरा आराम से खाएंगे।
अंडरलाइन क्या है?
आराम से खाना
खाना,
ठीक है जी। अच्छा, तो वो ना एक बंदा था माजिद भाई, तो वो ना जब भी कहीं शादी पे जाता था ना, तो खड़ा होके खाता था।
अच्छा,
तो उसको किसी ने कहा पायन की हो गया है, बेस्ती ना करो साड़ी, बहुत कुर्सियां, प्लीज बैठ के खाया करो। कहते अगर बैठ के खा लिया फिर उठेगा कौन?
वेरी गुड क्वेश्चन,
देख ले माजिद भाई,
वेरी गुड क्वेश्चन, गुड। ये तो बाबा जी के पास जाना चाहिए।
हाँ, ये इतना खा लिया कि उठा नहीं जा रहा,
इसलिए खड़े होके खाओ ताकि सर से लेके टो तक खाना जाता
है,
खाना ही खाना जाता रहे,
खाना खाना खाए है ना
वो, ठीक है।
कितनी ज्ञानी कौम है ये पाकिस्तानी,
ऐसे ऐसे
इंटेलिजेंट कितनी है कि भाई अगर बैठ के फिर उठा नहीं जाएगा है, तो पहले खड़े होके खाओ, साथ ही खा के बाहर निकल जाओ सर। समझदार बहुत है माजिद भाई,
बड़े समझदार हैं जी, बड़े समझदार
हैं, इसीलिए दुनिया बड़ी इंप्रेस्ड है पाकिस्तानियों से।
और खतरे में भी है कि यार ये अब नेक्स्ट इनका मूव क्या होगा।
हाँ, हाँ, हाँ,
हमने कुछ नहीं करना जी, परवाना करो आप, आराम से जीने दो, जियो।
नहीं, हमें मौका नहीं, कम से कम बड़ा कुछ सकते हैं माजिद भाई, मौका मिलने की देर है। अच्छी चीज है,
अच्छा, अच्छी चीज, अच्छी चीज।
माजिद भाई, आप जो है ना, आप हमेशा नेगेटिव वो उसकी तरफ सोचते हैं। हाँ, भाई कंपनियों बड़ियों बड़ियों के सीईओ बन सकते हैं, हॉलीवुड के स्टार्स बन सकते हैं, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज बन सकते हैं, उस पर मैं कह रही हूँ मौका नहीं मिला।
यार ये
व्हाट इज दिस माजिद,
नहीं ये तो हम लोगों को हायर करते हैं इन चीजों के लिए।
अच्छा,
हमने क्यों, हम तो बैठ के, हम तो खड़े होकर खाते हैं। और ऐसे लोगों को हायर कर लेते हैं, जावे तू ये कर, हाँ जी तू बैठ के खा जी, सब चीजें करो।
अच्छा 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 अच्छा,
समझा करो ना बात को, बात को चक्कर को समझा करो।
अच्छा अच्छा अच्छा, वो किसी ने पूछा ना सियाने ने, कहता है दुनिया कौन चला रहा है, अमेरिका या चाइना? तो उसने 10 इंडियन सीईओज के नाम दे दिए, तो उसने कहा हूं 10 कौन चला रहा
है,
चला तो इंडिया रहा सारी दुनिया ने। तो वैसे मौके की बात मैं कर रही थी, वैसे मौके,
मगर उन तमाम को हायर किसने किया, बिहाइंड द सीन पाकिस्तानी। हम तो सीईओ को हायर करते हैं जी, अच्छा, तो हायर करके बताते हैं
माजिद भाई, कहीं टर्मिनेशन लेटर ना हो जाए। ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना,
फॉरेन प्रेशर ना हो।
बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी बातें,
फॉरेन प्रेशर आ जाए।
यस, फॉरेन प्रेशर, अंकल सैम साथ ही बैठे हैं आपके, उधर से आ जाना, कहना अच्छा ये हम पीछे अमरीकी कंपनियां जो हैं ये तुमसे पूछ के हम हायर कर रहे हैं सीईओ, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मिस्टर अब्दुल माजिद जमाल।
ओ ओ,
इसलिए तो वो प्रेशर जो है मैनेजमेंट पे अगर आ गया
तो आप ऐसे सवाल ना किया करें ना मुझसे।
अच्छा मुझे देखा देखे ना मोहित भाई, अगर मैंने ऐसा सवाल कर भी लिया है तो आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए ना।
अच्छा, अच्छा
अब आप किस उम्र में जाके सीखेंगे पॉलिटिकली करेक्ट होना।
अब ये ऐसा है कि
ऐसा
हम नहीं हायर करते, हम कुछ भी नहीं करते, हम बैठ के खाना खाते हैं।
हाँ खाना खाते हैं आराम से।
ये पॉलिटिकल है।
हाँ बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट।
हम बड़े बड़े जी हम
बिंदास लोग हैं, बस सिर्फ खाना खाते हैं। खाना
मिलियन डॉलर भी जीत जाए तो क्या कहते हैं हम,
आराम से खाना,
आराम से बैठ के खाना खाएंगे।
हाँ।
तो हर चीज में खाना।
हाँ। बिल्कुल माजिद भाई ठीक है। तो ये इस तरह की
स्टेप आ गया।
हाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे प्यारी आपने स्टेटमेंट देनी।
स्टेप आ गया जी।
हाँ बिल्कुल ये ऐसे काम नहीं,
पॉलिटिकली करेक्ट।
हाँ बिल्कुल पॉलिटिकली करेक्ट आपने बातें करनी और प्यारी प्यारी बातें करनी।
हाँ जी
ठीक है
हो गया जी।
हाँ
वो उसको हमें उसको डिलीट कर दो।
बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी तो आमिर वैसे जो है ना आपके काफी उसके अंदर क्या बोलते हैं दायरा वो इख्तियार में क्या है?
दायरा इख्तियार में नहीं है वो अपना इज इज
मैन ऑफ क्या बोलते हैं फिर वो दायरा के इन्फ्लुएंस में
शागिर्द है।
ओ अच्छा 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 नहीं वो एक खास उर्दू का वर्ड है जिसमें कहते हैं आपके अंडर इन्फ्लुएंस है तो वो क्या है
ढूंढना पड़ेगा वर्ड उसका।
अगर सानू ढूंढना पड़े तो फिर तो लोग कहें भी हाँ भी ठीक है ये पंजाबी इनको कहाँ आती है उर्दू, आप तो उर्दू दान है आपको नहीं आ रही माजिद भाई व्हाट इज दिस।
ऐसे ही है खेलो जी खेलो जी खेलो।
व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस।
हाँ जी
व्हाट इज दिस आई डोंट लाइक इट।
ओके 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 काड़ी पाओ जी काड़ी
पाते हैं। अच्छा जी अच्छा जनाब हमारी प्यारी वेबसाइट पे जाएं, प्यारी सी वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं आपको बेशुमार खबरें मिलेंगी, लाइव आप रेडियो भी सुन सकते हैं, लाइव टीवी हमारा वॉच कर सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज देखेंगे, बहुत सारी लोकल खबरें आपको नजर आएंगी वो आप फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा आपको पता चलेंगी बहुत सारी स्टोरीज जो हम डालते हैं हेल्थ मेडिसिन लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट में, यूथ जोन में कुछ नई स्टोरीज आई हैं, ये आपकी ये जो ये स्पेशली जो भी आपको ये सामने नजर आ रही है बिल्कुल स्टोरी जो हमने कल डाली है ये तो ये यूथ जोन की स्टोरी आप जरूर जो बच्चे हैं खासतौर पर यंगस्टर्स 19-20-21 साल के और जिनको अच्छे जॉब्स चाहिए वो इस जगह पे जाके और ये स्टोरी को इस स्टोरी में बहुत कुछ है जिनसे वो सीख सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कनाडा की स्पोर्ट्स की न्यूज है और राइट साइड पे आपको नजर आएंगे हमारे जो हैं वो एडवर्टाइजर्स तो प्लीज आप इनको जरूर सपोर्ट करें ठीक है माजिद भाई। अच्छा माजिद भाई टाइम अब हो गया काफी ज्यादा तो इसलिए हम डायरेक्टली न्यूज पे चले जाते हैं न्यूज सुनाते हैं ठीक है
ठीक हो गया जी। जी साहब वेलकम बैक अगेन एंड 5:22:43 हमारी घड़ी में हो चुके हैं और अब हम चलेंगे बाकिया की पूरी न्यूज की जानेब और शाजा मलिक जी मेरे साथ हैं जी।
हाँ जी अच्छा मनीष भाई आज आपको पता है ना कि आज अभी बैठी हुई है कंजर्वेटिव कॉकस जो है वो अब रिव्यू कर रहे हैं कि एरन ओटूल साहब जो हैं उनको हमारा लीडर हजरत रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए तो बहुत सारे जो एमपी हजरात हैं वो लीडर हजरत के बारे में सोच रहे हैं कि इनको रहना चाहिए नहीं। अच्छा कुछ लोग जो है वही जो हमने पहले भी खबर सुनाई थी कि आधे लोग कहते हैं कि भाई इनको रहने दो आधे लोग कहते हैं तो इसी तरह आज की भी वो न्यूज है कि कुछ एमपीज कहते हैं कि जी ये जो राइट टू वोट टू व्यू है इसके जो अगेंस्ट बोल रहा है वो बड़ा गलत कर रहा है वो मिस्टेक कर रहा है क्योंकि लोगों का राइट टू रिव्यू जो है वो होता है वो जानना चाहते हैं कि उनका लीडर जो है कैपेबल है उनका कॉकस रन करने के लिए कि नहीं। दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि जी यही हमने मिस्टेक की थी एंड्रयू शीर के साथ अभी उनकी जो है कोई से बनी
जल्दी की थी
हाँ उनकी अभी कम्युनिटी में कुछ बनी नहीं थी से और फिर हमने एकदम से उनको चेंज कर दिया तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है 2 साल से तो पेंडेमिक चल रहा है उसके बाद 30 डेज के अंदर जो है इलेक्शंस हो गए हैं तो इनका कुछ इंटरेक्शन कैनेडियंस के साथ हुआ नहीं है अभी तो जब तक ये बाहर जैसे कि वो आ जाते थे ना इवन कोविड के जमाने में ट्रूडो साहब हर रोज अपने घर के बाहर रेडियो हॉल के सामने आ जाते थे और आके ऐसे बात करते रहते थे जो लोगों के साथ कनेक्टेड रहते थे हर वक्त प्राइम मिनिस्टर चलता रहता था तो वो कहते हैं इसी तरह इनको भी हर बाहर निकल के कैनेडियंस के साथ मिलना पड़ेगा इनको जो है जब तक ये उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि इनका विजन क्या है।
वैसे हकीकत में भी बात है
जी 30 डेज में जी बिल्कुल तो 30 डेज में भी और फिर جو وہ جو دو تین جو ڈیبیٹس ہوئی تھی اس میں آپ جج نہیں کر سکتے کیریکٹر آدمی کا, تو جب تک وہ تو مطلب میں بھی آپ کے ساتھ بالکل یہ میں اگری کرتی ہوں کہ یہ اب یہ ریویو تو کر رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ہٹانا چاہیے اب اتنی جلدی ان کو بھی, کیونکہ ویسے بھی پارٹی کو امیج کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ یہ کتنا فریکوینٹلی اپنا لیڈر چینج کر رہے ہیں,
ویسے بھی ان کو فیئر چانس نہیں دیا گیا.
ہاں فیئر چانس نہیں دیا گیا بالکل, تو ان کو جو ہے اور پارٹی کو ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے بھائی, اس پارٹی کو بھیجنا چاہیے یہ بھائی گھبرانا نہیں ہے ذرا تھوڑا چھری درسا لو اور اس کو بھی رہنے دو بےچارے بندے کو اور اس کو جو ہے وہ کرنے دو. بہرحال جی ایسے اب یہ ملا جلا, اب یہ کل ان کا رزلٹ کل تک آ جائے گا پھر ہم یہ بتائیں گے کہ جی ان کو انہوں نے لیڈر رہنے دیا کہ نہیں. لیکن جو ایرن اوٹول صاحب سے جن لوگوں نے بات کی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ میرے ساتھ کافی ایم پیز ہیں جو مجھے چاہتے ہیں کہ میں ایز دا لیڈر آف کنزرویٹو پارٹی رہوں. تو اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے یہاں پہ. اچھا جناب ایک جو گروپ ہے وہ بڑا ناراض ہو گیا ہے کینیڈا کے اندر, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکٹنگ ڈیفنس چیف تھے جنرل وین آئر, انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ سیکشوئل اسالٹ کے کیسز آگے تھے میجر جنرل پیٹر ڈو کے لیے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے کیونکہ ان کو نکال دیا گیا تھا پھر, تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کو ریویو کروں گا, ہم دیکھیں گے ہماری جو ڈیفنس سروسز ہیں وہ اس کو جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے ڈیفنس کینیڈا ہے وہ دیکھے گا اور یہ سارا ہم ریویو کریں گے. اب پتا چل رہا ہے جی کہ ان کو کچھ ریسپانسبلٹیز دی جا سکتی ہیں تو میجر جنرل صاحب کو, تو اس کے اوپر وہ گروپ بڑا ناراض ہے. وہ کہتا ہے بھائی اس کے اوپر تو بھی پوری نہ تو آپ نے انویسٹیگیشن بٹھائی ہے نہ آپ نے کوئی ان کو پوچھا ہے اور ان کے اوپر جو ہے آپ پھر سے پریس کرنے لگے ہیں.
ایک ایسا بن گیا ہے یہاں پر کہ ان کو جاب دی جائے تو کچھ لوگ ناراض ہوں گے, جاب سے نکال دیا جائے تو کچھ لوگ ناراض ہوں گے, تو دے آر سٹک ان دی میڈل رائٹ ناؤ.
تو اب یہ اب کافی یہ گروپ ناراض ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس ہے اس کو یہ اس کے اوپر پوری وہ بٹانی چاہیے تھی اور یہ کیوں ان کو جو ہے ایک ٹاسک دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس جو ہے ان کو کام دے رہا ہے کلیکٹنگ ریویوئنگ ریکمینڈیشنز, تو وہ جو ہیں اب یہ کیوں ایسے یہ کیا جا رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کچھ نہیں ہے اس چیز کے اوپر کیونکہ ایک ایسا آدمی جس نے پہلے بھی جو ہے وہ کریٹ کیے ہیں پرابلمز اتنے پریسٹیجیس ادارے کے اندر, تو وہ اگر اس کو آپ پھر سے کوئی ڈیوٹیز دیں گے تو پھر وہ کوئی کریٹ کر سکتا ہے پرابلم. تو بہرحال اب یہ بڑی جو ہے وہ چل پڑی ہے ادھر, تو اب پتا چلے گا کہ اب کیا ہوئے گا. اچھا جناب جو اونٹیریو کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ہیں ڈاکٹر کائرون مور, انہوں نے کہا ہے جی کہ کچھ سکولوں میں کچھ سکول جن کے اندر ہائی رسک آف ایکسپوجر ہے کووڈ 19 کا اس کے اندر ہم ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ جو ہیں وہ کرا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم سکول بورڈز کے ساتھ بھی کنسلٹ کریں گے اور سکولوں کے ساتھ بھی کنسلٹ کریں گے اور پھر ان کو دیں گے تاکہ جہاں پہ خاص طور پہ پریویلنس کی زیادہ ہے اور آؤٹ بریک زیادہ ہے وہاں پہ یہ کٹس دی جائیں تاکہ سکول کے اندر ہی بچے جو ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جائیں. لیکن آپ کو پتا ہی ہے کہ دنیا میں کے لیول پہ جو ہے ورلڈ لیول پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ کوئی اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ آئیڈیا یہ دے سکتے ہیں. تو ان کا خیال ہے ڈاکٹر کائرون مور کا کہ یہ جو ہے بچوں کے لیے اچھا ہو سکتا ہے تو ہم یہ کریں گے. ایک رپورٹ آئی ہے جی بلکہ ایک ریسرچ آئی ہے نئی, اینڈ دس واز پبلش لاسٹ ویک بائی بزنس ڈیولپمنٹ بینک آف کینیڈا بی ڈی سی جس کو بولتے ہیں اس نے, اور اس نے یہ کہا ہے یعنی کہ بڑی حیرت کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کمپنیز کے پاس جب سے یہ کووڈ آیا ہے ان کے پاس بے شمار جابز ہیں مگر کام کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں. اچھا انہوں نے جو سروے کیا ہے وہ شو کرتا ہے کہ 64 بزنسز جو ہیں ان کو وہ تو گرو ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ ہم گرو کیسے کریں گے اگر ہمارے پاس ورک فورس نہیں ہوئے گی, کیونکہ سٹیٹس کینیڈا نے بھی ایک خبر دی تھی کہ دیر آر 731,900 جابز جو کہ Q2 میں کریٹ ہوئی ہیں جو, لیکن پھر بھی ان کمپنیز کے پاس جو ہے ورک فورس نہیں ہے. اور جیسے کہ ابھی ڈیلوائٹ کینیڈا نے بھی کہا تھا کہ 30.3% جو ہیں کمپنیز کہہ رہی ہیں بزنس کمپنیز جو ہیں یہاں پہ وہ سمال بزنسز خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے لیبر شارٹیج ہے. تو
56%
جی
56% ہے اور یہاں پر لوگ دوبارہ کام پہ آنے, اب تو بہت سارے انسینٹیو دیے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھئی آپ واپس کام پہ آئیں तो आप ये इंसेंटिव्स देंगे।
हाँ हाँ हाँ, तो अब ये जी आ ही नहीं रहे लोग, तो अब ये काफी कंपनीज जो हैं इनको प्रॉब्लम मुश्किलात हैं। हाँ जी, अच्छा ये जो चीज है मजद भाई, ये तो आज सारे मीडिया के ऊपर बहुत बड़े तूफान का ये वो बनी रही है, और सारा मीडिया जो आज इसी के ऊपर, जैसे कल जो है वो उसके ऊपर बात कर रहे थे, पेंडोरा पेपर्स पे, तो आज जो है ये जो आज इंडिपेंडेंट एक इंक्वायरी आई थी, ये जो अब्यूज किया जाता था, सेक्स अब्यूज माइनर्स का किया जाता था फ्रेंच कैथोलिक प्रीस्ट की तरफ से और डीकन्स और दूसरे जो क्लर्जी थे, ये आज सबसे बड़ी जो है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर न्यूज थी। और ये हुआ ये था कि जो फ्रेंच जो कैथोलिक चर्च था उसके ही ऑफिशियल्स ने कहा था कि ये हमको बहुत सारी शिकायतें आई हैं, तो इसके ऊपर एक जो है बिठाने की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बिठाने की जरूरत है। इस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ने 2.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो कि ये शुरू हुई की गई है तकरीबन 7 डेकेड्स के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1950 to 2020, और इन्होंने फाइंड आउट किया है कि 216,000 kids जो है वो सेक्सुअली अब्यूज्ड। और इसके अलावा वो कहते हैं जी कि अगर इसके अंदर हम कैथोलिक स्कूल के टीचर्स और भी इस तरह के लोग जो है रिलेटेड स्टाफ अगर कर ले, तो दिस नंबर टचेस 330,000। तो ये अब इन 7 डेकेड्स, तो वो अब कह रहे हैं कि कैथोलिक्स तो वैसे जो हैं अदरवाइज वो बड़े कंजर्वेटिव हैं, आपको तो पता है कैथोलिक्स दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, और वैसे उनके बड़े जो हैं स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस वो फॉलो करते हैं, तो प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो जरा थोड़े से लिबरल हैं और वो अपनी मर्जी की जो चीजें, तो वो कहते हैं जी कि ये कैथोलिक जो स्ट्रीम है इसके अंदर ये इतना अब्यूज, यानी कि इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि इसके अंदर जो सेक्सुअल अब्यूज बचे हुए थे उसमें लड़कियां कम थी लड़के ज्यादा थे। तो अब ये तो मतलब है बड़ी खौफनाक किस्म की बात है।
इट इज, एंड अभी तक भी जो है वो इनके जो पोप हैं वेटिकन ने अभी तक इनके लिए अपोलोजाइज नहीं किया है।
हाँ जी, लेकिन उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया है, उन्होंने शर्मिंदगी का इजहार किया है इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन मतलब अब आप देखें कि इनके रिलीजियस अदारों के अंदर भी, अगर चर्चेस के अंदर भी बच्चा, जैसे हम बच्चे को मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, तो हमारा ये ख्याल होता है कि इस इस्लामिक सेंटर में या इस मौलवी के पास जो बच्चा कुरान पढ़ने जा रहा है, तो इट्स एन इस्लामिक सेंटर, राइट?
सेफ प्लेस।
हाँ, इट्स अ सेफ प्लेस, राइट? इसी तरह बच्चे जो कि चर्च में जाते हैं, माँ बाप का ख्याल यही होता है कि भाई इट्स अ चर्च, राइट? इट्स अ प्लेस ऑफ सैंक्टिटी, तो यहाँ पे तो लोगों को बल्कि उनकी इज्जत जान माल की हिफाजत होनी चाहिए। तो अब ये कुछ जो स्टोरी आई है इसने काफी यूरोप के अंदर जो है आईब्रोज जो है वो रेज किए हैं। अच्छा जनाब, आज बैक टू बैक जो दो कंपनीज हैं, एक एस्ट्राजेनेका और एक जो है जॉनसन एंड जॉनसन, उसने एफडीए को कहा है कि हमें इमरजेंसी यूज के लिए अपनी दवाइयां यूज करने दें। लेकिन इसमें अब ये दो डिफरेंट चीजें हैं। एस्ट्राजेनेका ने जो एफडीए को कहा है उसने कहा है कि हम एंटीबॉडी ट्रीटमेंट की हमको इजाजत दो। इन्होंने एक मेडिसिन ट्रीटमेंट जो बनाया है वो है AZD7442, और वो कहते हैं जी कि ये एक कॉम्बिनेशन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन, ये लॉन्ग लास्टिंग एक जो ड्रग है हमारी, ये जो COVID-19 के बहुत सीवियर केसेस हैं उनके लिए बहुत अच्छी है, यानी कि दिस इज अदर देन ओरल ट्रीटमेंट या के जो वैक्सीनेशन की जाती है, ये एंटीबॉडीज हम करेंगे, इंजेक्ट करेंगे बॉडी जो के सीवियरली इन्फेक्टेड होगी COVID-19 से, उसके थ्रू हम ये जो है कर सकते हैं, दिस इज वेरी इफेक्टिव, हमारी जो स्टडीज है उन्होंने शो किया है। तो एफडीए को उन्होंने कहा है जी कि ये आप हमारा फौरन से इसको आप अप्रूव करें। दूसरी तरफ जॉनसन एंड जॉनसन जो है उसने कहा है, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन का एक ही वो शॉट चाहिए था ना लोगों को, अब ये कह रहे हैं एफडीए को कि नहीं, तुम हमारा जॉनसन एंड जॉनसन का बूस्टर शॉट जो है उसको भी इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दो। तो आज ये इन दो कंपनियों ने एफडीए के पास अपनी स्टडीज भेजी हैं, और उनको जो एफडीए ने कहा है कि जी हमने दोनों स्टडीज अंडर जो है हमारे ऑब्जर्वेशन है, हम देखेंगे उसको स्टडी करेंगे, तो हम अगर हमको उसके अंदर कुछ बेनिफिट नजर आया तो फिर हम इसको अप्रूव दोनों को कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ जवाब नहीं आया है। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि हम रोज भी बता रहे हैं आपको कि अफगानिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है वहां पे, और रोजमर्रा के लिए चीजें भी लोगों के पास नहीं है, जॉब्स ही नहीं है बेसिकली, तो चीजें क्या खरीदेंगे, क्योंकि वैसे भी ये मुल्क जो है एड पे चल रहा था, तो अब तो बिल्कुल एड भी बंद हो गई है। तो इस तरह आज जो है तालिबान लीडर्स की दो डिफरेंट, अच्छा बड़ी मुझे हैरत हुई है न्यूज पढ़ के, दो डिफरेंट जो हेड्स ऑफ यानी ऑफिशियल्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के उनसे हुई, एक तो इनकी मुलाकात हुई है जी इरानियन ऑफिशियल्स से, یہ جو ان کے طالبان کے سپوکس پرسن ہیں بلال کریمی، آج انہوں نے بتایا کہ ایرانین آفیشلز کے ساتھ انہوں نے بہت لمبا جو ہے وہ بات کی ہے ایٹ اسلام کلا کے جو بارڈر کراسنگ ہے اس کے اوپر، اور ایران کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کو اکنامک ہیلپ بھی چاہیے، میڈیسنز چاہیے، کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، وچ از ویری سرپرائزنگ، کیونکہ ایران تو خود کہہ رہا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ بھئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں میڈیسنز لینے کے لیے، اور ہمارا جو ہے اکنامک کنڈیشن بھی ہماری پتلی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے اوپر سے سینکشنز اٹھاؤ اور یہ کرو. تو یہ بہرحال جی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کافی انہوں نے کہتے ہیں جی ہم یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں ان کو، ایران کو، کہ آپ ٹریڈنگ آورز جو ہیں وہ انکریز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کے ملک سے چیزیں ہمارے ملک میں آ سکیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹریڈنگ آورز صرف جو ہے 8 hours پر ڈے ہے ان 24 hours. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ اگر سارے دن کے لیے کھول دیں ٹریڈنگ کو تو زیادہ اچھا رہے گا. تو اب دیکھیں گے کیا اس کا آؤٹ کم ہے. دوسری طرف جو ہیں آج یو کے دو بڑے امپورٹنٹ ٹاپ آفیشلز جو ہیں طالبان سے دوحا کے اندر ملے ہیں. اچھا جی، ان میں سے جو ہے ایک تو چارڈی افیئرز ہے مارٹن لانگڈن، اور دوسرے جو ہیں سائمن گیس ہیں جو کہ ان کے پرائم منسٹر جو ہیں یو کے پرائم منسٹر کے اسپیشل وہ ہیں ریپرزینٹیٹو آن افغانستان. اچھا یہ دونوں کی بھی ملاقات آج ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ ملے ہیں آج ان کے سب سے بڑے جو لیڈرز ہیں ڈیپٹی پرائم منسٹرز جو ہیں افغانستان کے، عبد الغنی برادار، عبد السلام حنفی، اور جو ہیں عامر خان متقی، اور جو اخن صاحب ہیں ان کے ساتھ، یہ ان ساروں کے ساتھ ملے ہیں. اچھا یہ حیرت کی بات ہے، اور یہ جو نیوز ہے آج کی یہ دا گارڈین نے دی ہے، یہ جو یو کے والی جو نیوز ہے یہ دا گارڈین نے دی ہے، اور اس میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے تو یو کے کی گورنمنٹ نے جیسے ہی طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے اپنا ہائی کمیشن بند کر دیا تھا افغانستان کے اندر. اس کے بعد یو کے کی گورنمنٹ نے کہا کہ ہم طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو آج اپنے دو ٹاپ آفیشلز پھر دوحا میں بات کرنے کے لیے انہوں نے کیوں بھیجے ہیں؟ بہرحال اس میٹنگ میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی انہوں نے پھر سے ایک دفعہ ان کو کہا ہے یو کے کو کہ تمہاری جو ایجنسیاں افغانستان میں کام کر رہی تھیں اور ہیومینیٹیرین ایڈ دے رہی تھیں وہ دیتی رہیں، کیونکہ بہت ڈیپ ہو گیا ہے ہیومینیٹیرین کرائسس ہمارے ملک میں. تو یو کے نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہاں جی ہم آپ کو دیں گے ایڈ. تو ایک طرف تو آپ نے اپنا کاؤنسلیٹ اور امبیسی دونوں بند کر دیے، پھر آپ نے اپنے انوائز بلا لیے، پھر تو اب یہ اور اس کو ریکگنائز بھی نہیں کر رہے کیونکہ ابھی تک جو طالبان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کر رہے. آپ کو بتائیے کہ کچھ عرصہ پہلے میکرون صاحب نے یورپین یونین کو ساری کو کہا تھا کہ طالبان کو ہم کو ریکگنائز اس وقت تک نہیں کرنا ہے جب تک یہ ویمن رائٹس نہیں دیں گے. تو اب آپ لوگ تو اکٹھے ہو سارے، حالانکہ یہ تو بریکزٹ میں ہے، یہ تو باہر نکل آئے ہیں ان کا تعلق، لیکن پھر بھی مطلب بلاک تو ایک ہی ہے نا، تھنکنگ تو ایک ہی ہے سارا ہی. تو پھر یہ ان ٹاکس کا اور یہ ٹاپ آفیشلز کیسے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ آر یو ریڈی ٹو ریکگنائز دیم طالبان، یا کیا آپ انڈیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یو نو
اٹس کنفیوژن،
اٹس ویری کنفیوژن، کیونکہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ سے مل رہے ہیں اور آپ کو ہم ہیومینیٹیرین ایڈ دیں گے، آئی مین وائے؟ تو پھر آپ نے بند کیوں کی ان دا فرسٹ پلیس، رائٹ؟
اور دنیا کے اور دوسرے ممالک کو کیوں روک رہے ہیں،
کیوں روک رہے ہیں آپ، رائٹ؟ تو مطلب یہ کافی کنفیوزنگ جو ہیں یہ چیزیں آج جو یہ سامنے آئی ہیں. اچھا جی، اور اب کیا ہوا ہے، قندوز جو پروونس ہے اس کا افغانستان کا، اس کے اندر جو ہیں لڑکیاں سیکنڈری سکول میں آج دیکھی گئیں، لیکن وہ یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے وائٹ سکارفز پہنے تھے، کچھ نے بلیک پہنے ہوئے تھے، کچھ کے جو ہے فیسز ڈھکے ہوئے تھے. تو یہاں پہ جو ہیں ان کے طالبان کے سپوکس پرسن ہیں سہیل شاہین صاحب، انہوں نے کہا کہ قندوز میں بچیاں جو ہیں پرائمری اور سیکنڈری سکولوں میں واپس آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو ایجوکیشن منسٹری کے آفیشل ہیں محمد عابد صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ کابل کے اندر اور باقی پروونسز کے اندر ابھی تک لڑکیوں کو سکول میں واپس آنے کی اجازت نہیں ہے، اور طالبان اپنی اسی بات پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں کہ لڑکیوں کو سکول نہیں جانا. ایز اے ریزلٹ ایوری ویئر دا سکولز آر یو نو کلوزڈ،
شٹ ڈاؤن،
یا دے ور شٹ ڈاؤن اینڈ دے آر کلوزڈ اونلی ان قندوز. تو اب یہ بھی بڑی مطلب کنفیوزنگ یہ خبریں آ رہی ہیں افغانستان.
آئی تھنک اٹس گونا ٹیک ا لٹل ٹائم، میں نے ہمیشہ کہا ہے اٹس گونا ٹیک ا لٹل ٹائم. ابھی ان کو خود نہیں پتا ہے کہ گورنمنٹ کو کس طرح چلانا ہے، فورن پالیسیز کیا ہونی چاہیے، ابھی اندرونی معاملات کیا ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس وقت جب لوگوں میں خوشحالی ہو، خوشحالی اس وقت آئے گی جب کہ کچھ پیسہ آئے گا. ایک آپ ایک اگر نئی کمپنی بھی کھولتے ہیں اس کے اندر کوئی پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو ہاؤ لانگ از گونا رن، کیونکہ پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہی چیز ان کے پاس ہے بیچاروں کے پاس، ابھی پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، تو پیسہ از دا مین پرابلم فار دیم رائٹ ناؤ. اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ جو ایز اے پولیٹیشین دوسرے ممالک سے مل کے ذرا ان کی بھی بات مانے ہماری بھی بات مانے مل ملا کے جب وہ دنیا والوں سے بات کر کے سامنے آئیں گے مگر گیو دم ا لٹل ٹائم گیو دم ا لٹل ٹائم دے ول دے سیڈ دیٹ دس از ناٹ دا سیم طالبان وٹ یو سا دم 20 ایئرس اگو سو گیو دم ا لٹل ٹائم
بالکل ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آئیں کہ دوحہ میں جو ان کی ٹاکس ہو رہی تھیں تو اس میں کیا کہا گیا تھا کہ ہم تمہاری پوری فوجی بھی بلا لیں گے اور تمہاری ایڈ بھی روک لیں گے اس میں کیا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا
آئی ڈونٹ تھنک سر ایڈ وغیرہ کا کچھ بات ہوئی ہوگی اس کے اندر اس میں تو یہ تھا کہ بھائی آپ اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے
فوجیں واپس بلا لیں گے تو پھر مگر ایڈ بھی روک دی سارے یورپین یونین جو ہیں انہوں نے کہا کہ اب ہم ایڈ بھی نہیں دے رہے اور وہ بھی نہیں کر رہے تو آئی مین واٹ آر دا ٹاکس اباؤٹ پھر دین
مگر یہ کہ ان کو اس وقت میرا خیال ہے کہ یورپینس کو امیرکنس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کا لے کے آئیں گے کہ بچیوں کو جو ہے اسکول نہیں جانے دیں اور انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی تو مل ملا کے تو یہ دو ہی پوائنٹس ہیں ان کے پاس ایک تو انکلوسیو گورنمنٹ ہے اور دوسری بچیوں کی تعلیم تو یہ اس میں وہ ذرا اکڑے پڑے ہوئے تو میرا خیال تھوڑا سا ہل ہلا کے تھوڑی سی بات چیت ہو جائے آپس میں کچھ معاملات سدھر سکتے ہیں
ہاں جی اچھا آج بہت ہی زیادہ آئی اوپننگ جو یہ امریکہ کے دو ٹاپ نیوز پیپرز ہیں واشنگٹن پوسٹ اینڈ نیو یارک ٹائمز اس کے اندر جی بہت ہی ایک انویسٹیگیٹو سٹوری جو ہے وہ مطلب انویسٹیگیٹو سٹوری کیا ہے یہ دے ہیو ٹاک ٹو ایکچولی یہ جو ہیں فرانسس ہوگن جو کہ کبھی فیس بک کے ساتھ جو تھیں وہ ریلیٹڈ تھیں ایسوسیٹڈ تھیں
رائٹ
ہینڈ تھی ان کی اور
سائنٹسٹ آئی تھنک
جی اینڈ ناؤ شی از لیکن انہوں نے چھوڑ دیا تھا پھر فیس بک تو شی از این ایکس ایمپلائی ناؤ انہوں نے آج جی بے شمار جو ہیں وہ چٹھے کھول دیے ہیں ان کے فیس بک والوں کے کچے چٹھے بلکہ جس کو کہتے ہیں وہ کھول دیے ہیں تو آج یہ بگ نیوز تھی واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز کی انہوں نے کہا ہے جی کہ جو انٹرنل یہ جو فیس بک کے انٹرنل ظاہر ہے اس کو تو پتا ہی ہوگا نا انٹرنل جو ڈاکیومینٹس ہیں وہ روکتے ہی نہیں ہیں وہ انہوں نے مجھے شو کیا ہے کہ وہ روکتے ہی نہیں ہیں یہ جو انڈیا کے آر ایس ایس والے ہیں ان کی جو فیئر مانگرنگ اور جو ان کا کنٹینٹ ہے یہ روکتے ہی نہیں ہیں جو کہ ہیٹ سپیچ کے اندر بھی آتا ہے اور یہ فیئر بھی کریٹ کرتا ہے اور یہ جھوٹ پھیلاتا ہے جبکہ فیس بک نے کئی دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ جو ایتھنک وائلنس اور ڈویژن اور ہیٹ سپیچ ہے یہ سارا کنٹینٹ ہم ریموو کر لیں گے اور اس کی پرائم ایگزامپل یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جیسا بندہ جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ تھا اس تک کی سپیچز اور کنٹینٹ جو تھے یہ لوگ جو ہیں یہ سوشل میڈیا والے یہ ہٹا لیتے تھے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے وہاں پہ انہوں نے بنایا ہوا ایک فائل بنائی ہوئی ہے فیس بک والوں نے جس کا کہ نام ہے ایڈورسیل ہارمفل نیٹورکس انڈیا کے اسٹڈی اور اس کے اندر یہ سینکڑوں اور ہزاروں ہی ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ لوگ اینٹی مسلم کنٹینٹ اس پہ پھیلاتے ہیں یہ فیئر پھیلاتے ہیں یہ مسلمانوں کو ڈیو ہیومنائز کرتے ہیں یہ جو مسلمانوں کو جو آر ایس ایس پہ انڈیا کے اندر جو کرتے ہیں یہ لوگ پگز اور ڈاگز ان کو کہتے ہیں اس طرح کی کوئی پوسٹ فیس بک نہیں ہٹاتا ہے تو یہ آج جو ہے کانگریس کے سامنے یہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے بالکل وہ جو وہاں پہ کل کی سے جو یہ جو چل رہی ہیں کانگریشنل میٹنگز جو چل رہی ہیں جس میں کہ کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کا رول جو ہے اس کو تھوڑا سا کنٹین کیا جائے تو اس نے آج ان کے سامنے جب بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی ہے جو امریکن کانگریس مین ہے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یس یہ بالکل ہونا چاہیے اس نے یہاں تک کہا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ مس انفارمیشن یہ آر ایس ایس کے گروپس اور انڈیویجلس پھیلا رہے ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل دے آر کلیمنگ کہ قرآن tells its men they can rape their women تو وہ کہتی ہے ایسا کوئی کنٹینٹ جو ہے قرآن کے اندر نہیں ہے لیکن یہ مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور وہ پھر کئی ہزار دفعہ جو ہے وہ فیس بک کے اندر شیئر ہوتی ہے یا کہ لوگ فردر اس کو ٹویٹس پہ لے جاتے ہیں اور اس طرح چلی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں جی اور اس کا انہوں نے مجھے جب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا یہ چیز بیکاز شی از اے وسل بلور رائٹ تو وہ کہتی ہے جب میں نے اس طرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا کیونکہ مجھے بہت ساری کمپلینٹس آتی تھیں تو جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کیا تو فیس بک نے مجھے کہا جی ہم کو پتا نہیں ہے ہم نے اس لیے یہ کنٹینٹ موو نہیں کیا کیونکہ ہم ان کی زبانیں وہ جو گجراتی اور وہ ہے اور ہندی ہے ہم کو نہیں آتی تو اس کا یہ جو ہے فرانسس ہوگن اس کا کہنا ہے کہ پھر آپ نے فیس بک کے سب سے زیادہ یوزرز تو انڈیا کے اندر ہیں دنیا میں تو پھر وہاں پہ آپ نے ایکسپرٹس کیوں نہیں بٹھائے ہوئے ہیں جو کہ ان کو مانیٹر کریں اور ہٹائیں
صحیح
ٹھیک ہے جی تو ابھی تو اس نے یہ ابھی مسلمز کے لیے کہا ہے تو آئی ایم شیور کہ اس کے انڈر جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی کچھ ہوئے گا तो ये आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, क्योंकि आज शी इज अपियरिंग इन फ्रंट ऑफ कांग्रेस एंड शी इज टॉकिंग टू देम एंड गिविंग देम ऑल दीज, शी इज रिवीलिंग ऑल दीज थिंग्स, शी हैज ऑल दीज
डायरेक्ट उधर जो है मार्क जकरबर्ग को जो है
ब्लेम किया है एंड शी हैज ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स. तो अब जो है ये डॉक्यूमेंट्स फर्दर पड़ेंगे, इनकी और डिटेल्स आएंगी तो वो फिर हम आपके साथ जो है शेयर करेंगे. अच्छा जी, तृणमूल कांग्रेस की लॉ मेकर हैं सुष्मिता देव, और आपको पता ही, हमने आपको बताया था कि ये जो लखमीरपुरी खेरी के अंदर जो यूपी के अंदर हुआ है, वहां पे वो जो बैठे हुए थे फार्मर्स बैठे हुए थे उसके ऊपर प्रोटेस्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है ये इन्होंने गाड़ी चला दी थी यूनियन मिनिस्टर के बेटे ने, तो वहां पे जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं उनसे जाके ये आज मिली हैं सुष्मिता देव जो हैं, और इन्होंने कहा है कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर जो हैं और हमारी दीदी जो हैं वो ममता बनर्जी, वो भी आप लोगों के पास के साथ खड़ी हुई हैं. ये बड़ा हार्ट ब्रेकिंग है कि एक यंग फार्मर खासतौर पर जो है उसकी डेथ यहां पर हो गई है. और वो कहते हैं कि ये जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, ममता स्टैंड्स विद देम टू रीपील ब्लैक लॉज आल्सो, वो कहते हैं ये फार्मर्स जो ये जो तीन फार्म लॉज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं तो हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं इस ब्रूटल इनजस्टिस में, और हम जो है हमेशा ये जो फाइट जो फार्मर्स की है उसको हम सपोर्ट करते हैं. ये अब एक FIR दर्ज की गई है, ये जो लखीमपुरी खेरी के अंदर जो कुछ हुआ है उन्हीं के खिलाफ, वो जो आशीष मिश्रा हैं जो कि बेटे हैं इनके यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के, जिसके के बारे में कल से कहा जा रहा है कि इन्होंने गाड़ी, ये अपने साथ और भी बीजेपी के जो और भी अलेजली गूंज लेकर आए थे और इन्होंने गाड़ी चला दी थी उनके ऊपर, वो कह रहे हैं जी कि अब एक FIR लिखाई गई है और उसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि आशीष मिश्रा साहब हु इज द सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा, ये बैठे हुए थे महिंद्रा थर के अंदर और महिंद्रा थर गाड़ी के लेफ्ट साइड पर ये बैठे हुए थे और इन्होंने बहुत स्पीड से गाड़ी चलाई उनके ऊपर, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के ऊपर, और उनको रौंदा, और इसके अलावा जो उनका पीछे का भी जो था वो उसको भी ये रौंदते हुए आगे चले गए. और वो कहते हैं जबकि ये पीसफुली सारे फार्मर्स बैठे हुए थे, ये सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अजय मिश्रा और ये जो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्या हैं इनको वो आने नहीं दे रहे थे स्टेट के अंदर, वो कहते थे कि ये इनकी आमद के ऊपर हम खुश नहीं है तो इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो वो कहते हैं जी ये चार फोर व्हीलर्स, ये लोग जो है तीन फोर व्हीलर्स जो हैं ये लेकर आए हैं ये और इनके साथी, और इन्होंने ऐसा किया. तो अब ये अच्छा, अब ये FIR लिखते नहीं थे लेकिन वहां पे वो जो गुरविंदर सिंह जो लड़का है फार्मर जिसकी के डेथ हो गई है, वो कहते हैं जी उसके ऊपर इन्होंने अपनी खिड़की में से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की, उससे वो पहले तो जख्मी हुए फिर वो उनकी डेथ हो गई. और इसी तरह बाकी के भी जो आठ लोग मरे हैं इसी तरह इनकी फायरिंग से और गाड़ी ऊपर चढ़ाने की वजह से मरे हैं और हमने सब ने देखा है वहां पे, तो इसलिए आप इनके ऊपर अब वो करें. तो ये एक वहां पे आदमी था जगजीत सिंह, उसने कंप्लेंट ये लिखाई है और उसकी कंप्लेंट पे फिर अब ये FIR वहां पे लिखी गई है. तो अब इसको देखेंगे क्या होगा. आज मोदी जी जो थे वो लखनऊ में थे जो कि कैपिटल है यूपी का, और वहां पे ये एक इनॉग्यूरेट कर रहे थे आजादी एट 75, ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है आजादी एट 75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस और कम एक्सपो, ये वहां पे चल रहा है. तो वहां पे जब ये गए तो इन्होंने कोई मोदी जी ने 35 मिनट्स की स्पीच की और आदित्य योगीनाथ की बहुत ज्यादा तारीफ की जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, और उन्होंने कहा जी कि ये तो बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं और जैसे ये स्टेट को चला रहे हैं दैट इज सो एग्जम्पलरी और ये और वो. तो उसके ऊपर तो दुनिया भड़क गई है जी, मतलब इंडिया में लोग भड़क गए. उन्होंने कहा जी ये तो स्टेट इंतहाई एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटीज है, यहां पे तो लोगों को राइट लेफ्ट एंड सेंटर मारा जा रहा है, तो आप इनकी तारीफ कर रहे हैं, ऑल द मोर आप प्राइम मिनिस्टर थे, एटलीस्ट ये जो लखमीरपुर खेरी के अंदर ये जो आठ लोग मारे गए हैं एटलीस्ट उसकी आप निंदा कर देते, आपने तो उसकी भी निंदा नहीं की, यानी कि आपने उसको कंडेम नहीं किया, राइट. तो ये कैसे है, तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भागल साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ना ये इंतहाई एंटी फार्मर है, और इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं और वो कहते हैं जी कि इनकी आदत है बीजेपी गवर्नमेंट की कि ये हमेशा फार्मर्स की आवाज को ये निग्लेक्ट करते हैं, ये उनको जो है वो ज्यादा भाव नहीं देते हैं, और इनके जो सपोर्टर्स हैं बल्कि तो उन्होंने यहां तक एलिगेशंस लगाए, वो कहते हैं जी इनके सपोर्टर्स जो है फार्मर्स को तालिबानी और खालिस्तानी कहते हैं, जबकि वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो तीन लॉज आप लेकर आए हैं फार्म लॉज ये आप खत्म करें. तो ये इस तरह, अच्छा इसी तरह जो समाजवादी पार्टी के जो वर्मा साहब हैं उनके लीडर जो हैं वो कहते हैं जी कि इनसे इतनी तौफीक नहीं हुई कि 35 मिनट की स्पीच करते रहे तो सिर्फ अफसोस का इजहार कर देते, चलो कंडेम तो नहीं किया, अफसोस का इजहार कर देते कि ये जो आठ लोग मर गए हैं, लेकिन वो क्यों करते, क्योंकि उनके अपने यूनियन मिनिस्टर का बेटा उसके अंदर शामिल है.
सही,
तो इसलिए इन्होंने मोदी जी ने नहीं की, तो आज वहां पे ऑपोजिशन जो है काफी जो है भड़की हुई है और इस चीज पे भी भड़की थी कि जो है ये सारे जो कांग्रेस के लीडर जैसे सोनिया गांधी वगैरह को पकड़ लिया, नहीं सॉरी उनको प्रियंका गांधी वगैरह को पकड़ लिया था, तो बहरहाल कुछ कांग्रेस के लीडर्स जो है वो कहते हैं कि अब हम कल जाने की कोशिश करेंगे, अब जाने की कोशिश तो करेंगे, अब उनको अंदर जाने देंगे या नहीं स्टेट में, वो दैट इज डिफरेंट। पाकिस्तान के अंदर जी पीएमएलएन की जो वाइस प्रेसिडेंट है मरियम नवाज, उन्होंने आज नई एप्लीकेशन दी है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में और आज उन्होंने बहुत 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 क्लियरली उन्होंने कहा जी कि मैंने एक्सट्रीमली रेलेवेंट सिंपल क्लियर कट जो है फैक्ट्स दिए हैं और वहां पे जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने जुलाई 16, 2019 को सिर्फ 19 डेज बिफोर जनरल इलेक्शन ये कह दिया था कि नवाज शरीफ जो है उसको कन्विक्ट किया जाए करप्शन के केस के अंदर और ये जो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं उसके लिए, तो और उन्होंने कहा था कि इनको इनकी बेटी मरियम और उनके हस्बैंड जो हैं कैप्टन सफदर इनको 10 साल 7 साल और 1 साल रिस्पेक्टिवली इनको सजाएं दी जाएं। तो आज ये कहती हैं जी जो आज मैंने सबूत दिए हैं वो बिल्कुल इस्लामाबाद हाईकोर्ट को क्लियरली बता देंगे कि हमारा कुछ उसके अंदर गलत पैसा जो है एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर नहीं है। और लेकिन वैसे यही हुआ था कि जैसे ही वो आई थी वर्डिक्ट आई थी साथ ही इनको जो है बेल भी मिल गई थी सरों को, तो मतलब जेल में तो उन्होंने कोई टाइम नहीं काटा है। तो ये आज की वहां पे काफी ये भड़की हुई थी बाहर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के और ये बात कर रही थी मीडिया से। पाकिस्तान के जो टॉप कमांडर्स हैं जी उन्होंने जिनको के आज उनकी मीटिंग को आज प्रिजाइड कर रहे थे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा साहब, और ये आज की जो मीटिंग थी इसीलिए थी ये हो रही थी जनरल हेडक्वार्टर पिंडी में कि ये चीज देखी जाए कि ये जो इंडिया कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है और ये जो बॉर्डर मैनेजमेंट है हमको कैसे करना है, इंटरनल सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं, सिक्योरिटी जो रीजन के अंदर है उसको कैसे संभाला जाए, तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो आज गौर किया गया। इसकी जो है एक स्टेटमेंट आई थी जो कि DGISPR जो है उन्होंने दी है और उन्होंने कहा है जी कि जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें की जा रही हैं इंडिया की तरफ से और ये जो हमने बहुत मुश्किल से जो पीस और स्टेबिलिटी ली है उसको हम खराब नहीं होने देंगे, तो ये जो आज की टॉप मीटिंग थी उसी सिलसिले में थी। पाकिस्तान और ईरान के बीच में फिर से कुछ रابطे बढ़ने लगे हैं और आज भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब उनकी आज मुलाकात थी इनके साथ डॉक्टर अली भगेरी कानी के साथ और यहां पे ये दोनों डेलीगेशंस की बहुत अच्छे से बात हुई और इन्होंने कहा है जी कि हमारे जो अफगानिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक क्लैप्स देखा जा रहा है या जो कि सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं उनको हमको देखने की जरूरत है और हमको अपने भी ट्रेड और वो जो हैं चीजें उनको मजबूत करने की जरूरत है। अच्छा इसमें पाकिस्तान ने ईरान को भी अपनी तरफ से भी आज तो वैसे ईरान के ऑफिशियल्स मिले ही हैं तालिबान से लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तरफ से भी ईरान को कहा कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड देते रहे अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान के बारे में पाकिस्तान ने कहा है कि हम तो हमेशा उनके साथ जो है ऐसे ही खड़े रहेंगे उनके मुश्किल वक्त में, इन अ सेंस कि हम उनको ह्यूमैनिटेरियन एड जारी रखेंगे, हम किसी के कहने पर रोकेंगे नहीं क्योंकि हम तो कॉन्स्टेंटली और हम ये यहां पर खबर बताते रहे हैं कि पाकिस्तान मेडिसन और फूड और जितनी भी जरूरत की चीजें हैं वो उनको कॉन्स्टेंटली भेज रहा है, तो ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उनकी जारी रखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमको और दुनिया को भी तालिबान के साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है ताकि इस रीजन के अंदर पीस रहे और वापस यहां पे जो है वॉर फिर से ना शुरू हो जाए, तो ये आज इस मीटिंग के अंदर जो है बात की गई थी। अच्छा जनाब आपको पता ही है कि ये जो कुलभूषण यादव साहब हैं इनका केस जो था इंडिया लेकर चला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हमको एक्सेस नहीं दे रहा है और हमको काउंसिल भी अपना नहीं करने दे रहा है, तो आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जिसको कि 3 बेंच जो है वो जज जस्टिसेस जो हैं वो कर रहे थे सुन रहे थे ये हियरिंग जिसमें के थे जस्टिस अथर मिनाला जस्टिस आमिर फारूक एंड जस्टिस मिनगुल हसन औरंगजेब, उन्होंने एक दफा से फिर से इंडियन हाई कमीशन को कहा इस्लामाबाद में कि भाई आप अपना एक काउंसिल जो है इनको दें ताकि इनका केस जो है लड़ा जा सके। इंडियन हाई कमीशन का कहना है कि हमको इससे अकेले में बात करनी है पाकिस्तान की, जो कि इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने भी कहा था। पाकिस्तान का कहना है कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि हाथ मिलाते मिलाते ही कुलभूषण यादव के साथ ये इनको हार्म कर दें इनकी जान ले लें, तो हमारी प्रेजेंस में इनके साथ मीटिंग और बातचीत होगी, हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि इनको अकेला छोड़ दें इंडियन हाई कमीशन के ऑफिशियल्स के साथ। इंडियन हाई कमीशन ये मानने को तैयार नहीं है, वो कहते नहीं हमको अकेला टाइम चाहिए इसके साथ हमको जब तक नहीं देंगे, तो आज फिर भी उन्होंने कहा जी हम तो पाकिस्तान ने आज कहा है कि हम अपनी जो ऑब्लिगेशन है अंडर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो डायरेक्टिव है कि आप इसको काउंसिल दें, हम अपनी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं. अब इंडिया को अगर काउंसिल नहीं इसके लिए देना तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम इंडिया के ऑफिशियल्स के साथ अकेला नहीं छोड़ेंगे इसको. और वो कहते हैं जी ये तो इंटरनेशनल लॉ है, कोई भी कंट्री किसी भी स्पाई को ऐसे नहीं छोड़ सकता है अनअटेंडेड, तो हमारी प्रेजेंस में आपकी जो है वो मीटिंग होगी. तो ऐसे है. एंड जनाब वी आर रीचिंग राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज. केबीसी आप देखते ही होंगे शायद, कौन बनेगा करोड़पति है मैं भाई, कौन बनेगा करोड़पति? आप बन चुके हैं माशाल्लाह, इसलिए आपको जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है जी, तो जो नहीं बनेगा करोड़पति उनको कौन बनेगा करोड़पति में, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज जो उन्होंने क्लिप है सोनी ने वो एक की हुई थी कि 2017 में क्या हुआ था कि वैसे तो अमिताभ बच्चन साहब दूसरे दूसरे सेलिब्रिटीज को यहां पे हॉट सीट पे बैठे होते हैं और वो करते हैं, लेकिन 2017 में सिर्फ एक ही दफा इन्होंने अपने बेटे को बुला लिया अभिषेक को. तो अभिषेक ने अपने वालिद साहब से कहा कि नहीं, आज मैं हॉट सीट पे बैठूंगा और आप जो है, यानी कि मैं होस्ट करूंगा और आप हॉट सीट पे बैठेंगे, तो मैं आज आपसे क्वेश्चन करूंगा. और तो कहते हैं वहां पर उन्होंने अपने वालिद साहब को जो है इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने कहा जी कि मेरे सामने बैठे हैं मुंबई से आए श्री अमिताभ बच्चन, ही इज एन एक्टर, ही हैज वर्कड इन मेनी फिल्म्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड इफ ही विंस ह्यूज टुडे ही विल शेयर ऑल दैट मनी विद हिज सन और ही विल गिव ऑल दैट मनी टू. तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि सेज हु? तो बेटे ने कहा, अभिषेक ने कहा कि आपने हमेशा कहा है कि हमको मिल बांट के रहना चाहिए. तो अमिताभ बच्चन ने कहा नहीं नहीं, आज की जो विनिंग है वो मैं मिल बांट के नहीं खाऊंगा, वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरी विनिंग है और वो मैं अपने पास खुद के पास रखूंगा. दैट ऑल इज माइन, इट्स नॉट योर्स. एंड जनाब एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज है और इसके मुताबिक रशिया के एक्टर्स और डायरेक्टर एक जो हैं, एक्टर हैं यूलिया परशिल्ड और एक और इनके साथ हैं, और इनके साथ डायरेक्टर हैं क्लिम शिपेंको, ये सारे फिल्म बनाने के लिए स्पेस में जा रहे हैं.
ओके
जी,
दुनिया में
तो ये हाँ, दुनिया जगह छोटी हो गई है, मतलब जमीन कम पड़ गई है इनको. तो ये सारे के सारे दे हैव ऑलरेडी ब्लास्टेड ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो रशिया का जो सोयूज एयरक्राफ्ट है उसके अंदर, और ये वहां जाके अब जो है ये कॉस्मोनॉट्स जो हैं ये अपनी बनाएंगे. और ये कह रहे हैं कि इनके साथ हैं बहुत ही वेटरन कॉस्मोनॉट एंटोन शिपेक्लेव रॉव है इनके साथ. तो ये वहां पे गए हैं और ये जो जिस स्पेस शटल में ये गए हैं इसका नाम है सोयूज MS-19, और वो कहते हैं जी वहां फिल्म बना के आएंगे. तो जो इनकी इनिशियल जो बातचीत अभी हुई है स्पेस स्टेशन के अंदर अपने रशिया के अंदर, वो कहते हैं जी वहां से पता चला है कि ये लोग सब अच्छी हेल्थ में हैं और ठीक हैं और वहां पे अब ये जो है अपना काम शुरू करेंगे. और इस मूवी का नाम है चैलेंज. तो अब ये देखना है कि ये क्या उधर चैलेंज देने वाले हैं लोगों को, और ये 12 दिन की शूट स्पेस में करके वापस आएंगे जी.
क्या बात,
तो फिर पता चलेगा कि वो एना दे नाल है एलियंस,
पहली फर्स्ट
हाँ फिल्म इन स्पेस. यस यस, जैसे कि इनका पहला बंदा स्पेस में गया था
चैलेंज.
हाँ ये जस्ट चैलेंज कर रहे हैं ये दुनिया को. ठीक है जी, तो अब पता चलेगा कि ये उनको इनकी मुलाकातें जो है एलियंस के साथ हुई कि नहीं. ठीक है जनाब. एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज टुडे इज ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये कुछ मुश्किलात का सामना कर रहा है. हालांकि UAE के जो स्टेडियम्स हैं वो तो अप एंड रनिंग है, आपको पता ही है. वहां पे तो अभी तक IPL भी चल रहा है तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो मैचेस जो हैं शुरू होने हैं T20 वर्ल्ड कप के, इनके जो लेकिन प्रिलिमिनरी जो मैचेस हैं वो UAE में नहीं होने हैं. प्रिलिमिनरी मैचेस जो हैं जो अक्टूबर 17 से शुरू हो रहे हैं वो ओमान के अंदर होने हैं. अच्छा, दुबई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज रेडी, पूल्स पखे जो है वो होटल्स एवरीथिंग इज यू नो टॉप क्लास एंड वो, लेकिन ओमान के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ है कि वहां पे जो साइक्लोन आ गया ना, साइक्लोन शाहीन, उसकी वजह से काफी तबाही मची हुई है, सड़कों के ऊपर पानी है और जो है चीजें काफी बुरी हालत में आ गई हैं. क्योंकि ओमान ने कहा था कि हमारा जो अल अमीरात स्टेडियम मस्कत के अंदर है दैट इज एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास, जो कि है भी वैसे. अगर आपने तस्वीरें देखी हैं अल अमीरात अमीरात स्टेडियम की, बहुत ही जबरदस्त तस्वीरें हैं, तो अगर आप कभी देखें तो वो कहते हैं कि जो ICC है वो कहता है कि वैसे तो हम सोचते हैं कि यहां पे मैचेस होंगे और यहां पे हम 3000 के करीब लोगों को बुला सकते हैं मैचेस करने के लिए, लेकिन अब اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مسقط کی حالت آنے والے دنوں میں کیسی ہوتی ہے. تو آئی ایم شیور کہ یہ اکتوبر 17 تک سب ٹھیک کریں گے. اور دبئی کے اندر جو میچز ہوئیں گے جی ورلڈ ٹی 20 کے, اس کے اندر 70% کیپیسٹی لوگوں کی
ابھی 2 weeks
ہو سکتی ہے.
ان کے پاس
2 weeks ہے, وہی عمان نے کہا ہے کہ ہم وی ول ٹیک کیئر. اور ویسے بھی وہ جو یو اے ای ہے وہ تو ان کے جیسے کہتے ہیں نا بجو میں بیٹھا ہے, تو بجو میں بیٹھا یو اے ای, تو یو اے ای سے تو فٹافٹ وہ ایکسپرٹس چیزیں مشینیں سب بلا کے سب پانی جو ہے اس کو سڑکوں سے وہ سک کر کے اور کلین اور یہ وہ سب لشکا دیں گے بالکل, تو چمک چمک جائیں گی چیزیں. تو جناب یہ ہیں آج کی ہماری کہانیاں,
یہ تھی آج کی کہانیاں.
ہاں جی,
اور باقی کی کہانیوں کے لیے آپ نے کل آنا ہے, پھر کل پھر آنا ہے آپ نے. اور اب سے کچھ دیر بعد ابھی کچھ اسپانسرز کے پیغامات دیں گے, اس کے فوری بعد پھر ہم یہ پروگرام جاری رکھیں گے 6:30 تک انشاءاللہ تعالی. ہم نے اور آپ نے ساتھ ساتھ رہنا ہے. شازیز تھینک یو سو مچ.
تھینک یو مچ بھائی, آئی ول سی یو ٹمارو
انشاءاللہ.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ دا بھی چلاونے ہو مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھولتی ہے, ایگزٹ 579